इसकी जो मिस्टर नागपाल ने बताया जो इसकी फीस है दैट इज चार्जेस $199 है, आपको कॉल करना है 4374-3175 पे आपने कॉल करना है। अच्छा जी, मैंने अरहम बिल्डर से आपकी बात करानी थी, नहीं हो सकी, आइए एक और गीत की तरफ आपको लेके चलती हूँ। और चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी, लोगों का क्या समझाने दो, लोगों की अपनी मजबूरी। साहब मैं ये वाला गीत आपके खिदमत में पेश करती हूँ, आई होप यू विल लव दिस सॉन्ग। चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी, ये जो हम आपकी खिदमत में गीत पेश करने लगे हैं, पाकिस्तान की सिंगर अफशां साहिबा हैं जिन्होंने इस गीत को गाया। यकीनन गुलशन आरा, गुलशन गुलबहार बानो, गुलबहार बानो की आवाज में ये गीत हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आई होप यू विल लव दिस, आवाज गुलबहार की। चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी, लोगों का उनकी अपनी मजबूरी। रोक सको तो पहली बारिश की बूंदों को तुम रोको। جناب چاہت میں کیا دنیا داری، عشق میں کیسی مجبوری۔ بہت خوبصورت آخری دو مصرے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے انہوں نے، کہ کچی روک سکو تو بارش کی پہلی بوندوں کو تم روکو، کچی مٹی تو مہکے کی اس کی اپنی مجبوری۔ ایک اور بڑی خوبصورت ایک انگریزی کہاوت ہے، A friend in need is friend indeed۔ اب جب ہم نے بچپن میں محاورے اور کہاوتیں یاد کی تھیں، ایڈیمز یاد کیے تھے، دو محاورے مجھ کو کبھی اپنی زندگی میں ان کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا، مگر وقت نے مجھے ان کا مطلب سمجھایا۔ دو محاورے ہیں، ایک محاورہ تھا A friend in need is friend indeed کہ ہم تو سمجھتے تھے بس دوست دوست ہے، مگر وہ تھا A friend in need is friend indeed۔ جب تک پیش نہیں پڑی تھی نا، ہم کو اس کا مطلب نہیں سمجھ آیا تھا کہ وقت کے اوپر دوست وہ ہے جو کام آئے نا، جو وقت کے اوپر مجبوری میں ہمارے ساتھ ہو، اصل میں انڈیڈ وہی آپ کا فرینڈ ہوا کرتا ہے۔ ایک اور کہاوت تھی، ایڈیم تھا کہ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ لو جی، ہمیں تو کوئی غم ہی کوئی نہیں تھا، ہم کہتے تھے دل خون کے، ہاؤ اٹ از پاسبل کہ دل خون کے آنسو رو؟ ہارٹ از این آرگن، اٹس این آرگن وچ جسٹ پمپس بلڈ، دل خون کے آنسو روتا ہے، واٹ ڈز اٹ مین؟ بٹ ناؤ آئی نو واٹ ڈز اٹ مین۔ دل خون کے آنسو روتے، جب ہوک پڑتی ہے دل کے اوپر، جب ہم کہتے ہیں ہمارا دل ڈوب رہا ہے۔ سو وقت، یہ تمام چیزیں انسان کو، دنیا اور وقت، ان چیزوں کو اس بارے میں پتا دیتا ہے۔ آئی ایم ویٹنگ فار ون آف آر اسپانسر، اینڈ ڈیفینیٹلی ایک ملاقات کی طرف بھی آپ کو لے کر کے بڑھنا ہے۔ چند ایک اسپانسر کا پیغام لیتے ہیں، ویلکم بیک، پلیز سٹے ٹیونڈ۔ اسٹوڈیو نمبر
4 یا کریٹیکل النس جیسی ناگہانی صورتحال کے لیے تیار ہے؟ اگر نہیں تو سن لائف کی پردیپ جی کا نام یاد رکھیے گا، 4168945872۔
جی ہاں، سلام مشورے اور کسی بھی پالیسی کے ریویو میں میں پردیپ سنگھ آپ کی پوری مدد کروں۔
ٹرسٹ ول بی آنےسٹ Chartered Life Underwriter and Canadian Health Specialist, Mr. Pradeep from Sun Life, 416-894-5872, 894-5872.
اور ہر ٹیوزڈے کو میرے ٹاک شو میں ضرور شامل ہوں۔
ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس، ایل ای ڈیز اور ہوم اپلائنسز کی ہاٹسٹ اور برانڈیڈ رینج کے ساتھ 0% فائنانس، گارنٹی اور لوئسٹ پرائسز، اور فری ڈیلیوری ان جی ٹی اے۔ تو انتظار کیسا، ابھی وزٹ کریں ٹیلی ٹائم برامپٹن، 280 ردرفورڈ روڈ، یا اسپرنگ ڈیل اسکوئر شاپنگ سینٹر، یا ایٹوبیکو 1770 ایلبین روڈ، یا 9909 مارکم روڈ۔ مزید تفصیلات کے لیے کال کریں 9054551666۔ ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس۔
ਭਾਈ ਸਸਤਾ ਲਾ ਲਾ, ਇੰਜ ਕਰ ਤੂੰ 6 ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਲੈ ਲਾ। ਓਹੋ ਸੱਲਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਫਰੈਸ਼ ਗਰੋਸਰੀ, ਫਰੂਟਸ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ।
ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ, ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀਜ਼, ਫਲ ਫਰੂਟ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ, ਪਲੇਟਾਂ, ਬਾਟੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੈਰਾਇਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ।
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੜਾਈ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੜਾਈ ਖਾਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ?
ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕੜਾਈ 804।
ਜੀ ਹਾਂ, ਕੜਾਈ 804 ਵੀਕਐਂਡ ਕੇ ਉਪਰ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਹਲਵਾ, ਪੂਰੀ, ਪਲੇਟਰ ਔਰ ਪਰਾਠੇ ਕਾ ਪਲੇਟਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਬੀਫ ਨਹਾਰੀ, ਯਖਨੀ ਵਾਲਾ ਪਲਾਓ, ਬੀਫ ਪਾਏ, ਭਜੇਗੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਚੰਦਨ ਕਬਾਬ, ਚਿਕਨ ਟਿੱਕਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਹੈਂਡ ਸਲੋਟਡ ਮੀਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਘਰ ਕੇ ਮਸਾਲੇ, ਜ਼ਾਇਕੇਦਾਰ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓ।
ਲੋਕ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਖਾਨੇ, ਹਮ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ। چاہے ڈائننگ کرنا ہو، ٹیک آؤٹ یا کیٹرنگ کے لیے آج ہی رابطہ کریں 9054170804، 9054170804۔ ہمارا ایڈریس ہے 3604 میجر میکنسی ڈرائیو ویسٹ وان، پردیس میں دیس۔
جی صاحب، پردیس میں دیس کی بات کی ہے، شیراز شفیق سے بھی میری دوبارہ بات ہوئی ہے۔ شیراز شفیق واز ان یورک ریجن میں، اور میں بھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ Practically it is heartbreaking. A man 38 years of age, جس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جانے والے کے لیے تو اس کا اسٹیشن آیا، وہ تو اپنے ٹرین کے اسٹیشن سے اتر گیا، مگر یس، اصل میں قیامت اب ٹوٹے گی بچوں کے اوپر۔ انہوں نے اپنے 38 years, this means very young shakhs, agar 25-26 saal ki umar mein bhi uski shaadi hui hai, to bade se bade bacche ki umar 10 saal ki hogi. To behral ek beta, 3 betiyan hain, Swiss Chalet mein ye job kiya karte the, Swiss Chalet mein. Allah tbarak wa taala jaane wali ki manzilon ko aasan kare, Allah kare ki Canadian system mein rehte hue humne un tamam cheezon ko adopt kiya. Hamari mohabbat kabhi bhi apne bhai behno se kam nahi hoti, magar sahab ye duniya aajkal har insaan apne ek wheel mein hai, apne ek chakkar mein hai. For example, मैं अपने चक्कर से बाहर नहीं निकल सकती. एक मॉर्गेज है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, टैक्सेस हैं, ongoing expenses हैं. हालांकि ना भी कोई फजूल खर्ची करूं तो there are certain ongoing expenses. तो जिसकी वजह से हर इंसान, पाकिस्तान में जरा ये सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट था कि हमारे घर पेड हुआ करते होते थे. इट वॉज वेरी इजी कि हम फैमिलीज को अकोमोडेट डिफरेंट. बहरहाल जिनके दिल खुले हैं वो यहां पे भी ये सब कुछ करते हैं. तो ये शख्स, इनका अबरार इनका नाम था, 38 years of age, हार्ट अटैक हुआ, he died with the heart attack. It's a very young age, 38. मगर जो depression, tension आजकल के दौर में है, that is a killer number one. Diabetes, sugar अगर होती है तो tension is one of the cause. और भी बहुत सारी चीजें इसकी वजह से हो जाती हैं. बहरहाल एक बेटा, 3 बेटियां छोड़ी. I am so sorry के so kind of Shiraz Shafiq Akal Mortgages के साथ he was in the funeral. He said I am totally occupied here. बहरहाल मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, स्पॉन्सर्स को जरूर तावन दिया कीजिएगा. शिराज शफीक इनका नाम है, मॉर्गेजेस के साथ, अकाल मॉर्गेजेस के साथ, रेजिडेंशियल या कमर्शियल, हर तरह की मॉर्गेज के लिए आप इनके नाम को याद रखें. तो शिराज शफीक का नंबर आप नोट कर लीजिएगा, 416-502-8000, 416-502-8000 उनका नंबर है. दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें भी आपके साथ शेयर करती चलूं. साहब सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टोरंटो, बल्कि कॉन्ग्रेचुलेशन कैनेडा, कॉन्ग्रेचुलेशन, इट्स अ ग्रेट कमबैक फॉर ब्लू जेस. आपको बताइए कि बड़ी तारीखी फतह मिली ब्लू जेस को कल. और आई जस्ट ट्राइड कि मैं माजिद भाई की आवाज भी आपको जरूर सुनाऊं. आई विल ट्राई एंड आई नो वेयर ही इज एट द मोमेंट. फिर उनकी बेगम साहिबा से भी बात हुई है. आई विल ब्रिंग माजिद भाई बिकॉज माजिद भाई वॉज ऑलवेज डेस्परेट टू शेयर दिस गुड न्यूज बिकॉज ही लव्ड, उनका मोहब्बत चाहे वो ब्लू जेस के लिए हो चाहे वो मेपल लीफ के लिए हो, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. टोरंटो ब्लू जेस की वर्ल्ड सीरीज की टिकट जो ही ओपन हुआ साथ ही सारी की सारी बिक आ गई. तेरिए साहब ये भी शुरू हो गया. एक मुलाकात की तरफ लेकर के इस वक्त आपको जाना चाहती हूँ. अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ. अगर कोई लेट हो, आपको याद है बचपन में जब हम स्कूल में लेट हुआ करते थे तो सजा होती थी ना. करामतुल्लाह गौरी साहब भी बैठे हुए हैं, मुझे याद है कि अगर हम स्कूल में लेट पहुंचते थे, अब हमारे जमाने तक आते हुए वो 4 आने वाली सजा खत्म हो गई थी. 5 रुपए वाली सजा का जमाना था मेरा. क्लास में लेट हो जाते थे तो दाखिल नहीं होते थे, पर्चे में लेट होना चाहते थे हो जाते थे तो पर्चा देने के लिए दाखिल नहीं. अगर कोई लेट हो जाए तो उसकी क्या सजा होनी चाहिए, ये आपने मुझे बताना है, ठीक है. और जो लेट हुआ है ना वो आग नीचे करके हाजिर भी रहा है. अब बताएं जरा क्या कर सकते हैं. मगर साहब दुनिया को आसान लेना चाहिए, हम सीरियस बात भी करनी है, हंसते बोलते करते हैं तो ज्यादा बेहतर है. यूनी ग्लोबल एडवाइजरी के बारे में मैं आपसे बात किया करती होती हूँ. जनाब नागपाल जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं. नागपाल जी गुड आफ्टरनून एंड हाउ आर यू.
थैंक यू वेरी मच जी, सभी को सलाम एंड आई एम ओके. आप कैसे हैं?
मैं तो ठीक हूँ. मुझे बताओ इंडिया में भी स्कूल में अगर बच्चे लेट हो जाते तो क्या सजा हुआ करती?
बाहर खड़े कर देते थे. फिर प्रिंसिपल आती थी. प्रिंसिपल अलग से हाथ आगे करती थी, ऐसे हाथ आगे करो, फिर केस से मारती थी.
नहीं 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 नहीं, हमारी तो दो दफा. अच्छा वो सजा हम बर्दाश्त कर लेते थे
जी,
चाहे वो पैसों की सजा होती थी वो सबसे आसान होती थी. पैसे दे दिए, 5 रुपए दे दिए
जी.
अच्छा दूसरी सजा होती थी कि खड़ा कर दिया या क्लास में आने दिया, अब वहां डर लगता था.
जी
2 के बाद 3 पे पेरेंट्स को कॉल कर लेते थे, सबसे खौफनाक मामला वो. अब वो हमारे जमाने के पेरेंट्स जो थे वो ऐसे पेरेंट्स थे जो ये नहीं कहते थे कि हाँ मेरा बच्चा ठीक है और टीचर गलत है. वो कहते थे टीचर ही ठीक है. हालांकि टीचर गलत भी होता था ना, तो माँ बाप कहते थे टीचर ही ठीक है, तुम तो गलत हो.
अब बिल्कुल उल्टा है
अब. अच्छा तो वो सबसे गलत मुश्किल बात वो हुआ करती थी जिसमें ये होता था कि माँ बाप को सजा दे दी, माँ बाप को पता लग जाएगा मैं मर जाऊं.
हाँ जी.
अच्छा तो नागपाल जी यहाँ पे मौजूद हैं, कितने मिनट हैं? 6 मिनट लेट है। अब 6 मिनट लेट की क्या सजा होनी चाहिए आपने मुझे बताना है, मगर दिस इज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम। बिफोर आई स्टार्ट दिस, मैं पिछले कुछ अरसे से आपके साथ शेयर भी करती थी कि बहुत सारे कैनेडियंस आते हैं और वो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम पे आते हैं और मैं जी 4,000 हम तो टैक्सी पे करते रह जाते हैं, उनका 4,000 भी गवर्नमेंट पे करती है, उनको फर्नीचर भी ले। दीज आर द प्रोग्राम्स मेरे लिए, अगर मैं कनाडा में रहती हूँ हमारे लिए भी प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में हमको मालूम नहीं है। दीज आर एजुकेशनल प्रोग्राम्स। इफ यू थिंक कि आपके पास जॉब नहीं है, आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो देयर आर वेरी मेनी कोर्सेज जो आप कर सकते हैं, मगर इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग। आप मिस्टर नागपाल को कॉल कर सकते हैं, यूनी एडवाइजरी को आप कॉल कीजिएगा। इसमें सर्टन कंडीशंस हैं। नंबर वन के खुद ही बताते हैं, मैं हमें खाम खाप यस जनाब, यूनी एडवाइजरी से मिस्टर नागपाल, टेल अस अबाउट योर कंपनी।
हाँ जी, सो हमारी कंपनी का नाम है यूनी ग्लोबल एडवाइजरी, हमारा ऑफिस मिसिसागा में है, आपको एड्रेस भी दे देंगे हम। एंड सो हम उन कोर्सेज में डील कर सकते हैं जहां पे आपको अपनी जेब हल्की करनी पड़े पढ़ाई करने के लिए, बट हम नहीं करते। हम उन कोर्सेज में डील करते हैं जिसमें गवर्नमेंट फंड करती है कोर्सेज को, और साथ में आपको रहने खाने के लिए लिविंग एक्सपेंसेस के तौर पे गवर्नमेंट आपको फंडिंग देती है। फंडिंग के दो पार्ट हैं, एक तो है ग्रांट्स, ऐसा पैसा जो आप कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। दूसरा है ऑप्शनल लोन, लोन आप यूज कैसे भी कर सकते हैं बट आपने लौटाना है, क्योंकि उसका नाम लोन है। कब लौटाना है? बहुत टाइम बाद और बहुत कम ब्याज दर पे। सो आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हमारे पास कोर्सेज है बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, अकाउंटिंग भी हमारे पास। सो लाइक अगर कोई फैमिली ऑफ फोर है, मान के चले हस्बैंड वाइफ दो बच्चे, और अगर वो बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों कर रहे हैं, इजी टू पास फुली ऑनलाइन कोर्सेज घर के कंफर्ट से, 2 से 3 घंटे मंडे टू फ्राइडे क्लास लगानी है बस, नो एज लिमिट। कनाडा की कोई भी पॉलिसी एज पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, भेदभाव नहीं करती एज पे। सो आपको $1.5 लाख आपके खाते में आएगा 4 इंस्टॉलमेंट में, गवर्नमेंट डायरेक्ट आपके खाते में डालती है 4 इंस्टॉलमेंट में। जैसे हमारा नेक्स्ट बैच शुरू है अभी 2 नवंबर को, तो विद इन 45 डेज आपके अकाउंट में पहली इंस्टॉलमेंट आ जाती है। अब 1.5 लाख में से जी 80,000 तो ग्रांट मनी है, जो कहीं भी कैसे भी खर्च कर सकते हैं अपने अनुसार। आप उसे चाहे ग्रोसरी करें, उसे बैक होम भेजें, गवर्नमेंट आपको लिविंग एक्सपेंसेस के लिए दे देगी। मेरा बच्चा पढ़ रहा है, इसको रोटी खाने के लिए पैसे दे देते हैं, तो अगर फैमिली ऑफ फोर है। और साथ में ऑप्शनल लोन $70,000 का है, उसकी 2 खास बातें हैं जो कहीं आपको नहीं मिलेंगी। वो लोन 0% पे है, कब तक? 2 साल का कोर्स है, तो 2 साल तक वो 0% पे है। वापस कब करना है जी? 2 साल का कोर्स होता है, 2.5 साल बाद वापस करना स्टार्ट करना है, वो भी उस टाइम पे ब्याज दर क्या होगी? 2.5% पूरे साल का, मतलब आपको $1.5 लाख एक आ गया 2 साल में 4 किस्तों में। और अब आपको लगेगा कि मेरी कोई बड़ी भारी फीस होगी, है ना जी, मेरी कोई सिर्फ $199 हमारी फीस है। कब देनी है? जब पहले इंस्टॉलमेंट आपके खाते में आ जाता है तब देनी है। जैसे हमने जो 2 सितंबर को एडमिशन कराए थे, उनकी फंडिंग होनी शुरू हो चुकी है, उनके खाते में पैसे आने शुरू हो चुके हैं। और ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जी, मेरा नहीं।
दो की दो को प्रोग्राम करते हैं, 2 सितंबर को किया, 2 अक्टूबर को नहीं किया, 2 नवंबर को कर रहे हो प्रोग्राम?
यस, एवरी 2 नवंबर को स्टार्ट है नेक्स्ट बैच। तो हमारा 22 को भी है, अगर कोई राइट अगर आजकल में आ जाता है उसको भी एनरोल कर देंगे नेक्स्ट। इतना वी आर गेटिंग गुड,
अगर आजकल में भी कोई आता तो यू कैन एनरोल,
या वी कैन एनरोल देम, नहीं तो 2 नवंबर से आपको हम डाल देंगे। और ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोर्सेज है। गवर्नमेंट अब ऐसे नहीं चलते हुए किसी कॉलेज को अप्रूवल दे देगी ना। अगर ओंटारियो में 1,000 कॉलेज है, सिर्फ 60 कॉलेज अप्रूव्ड है गवर्नमेंट से फंडिंग के लिए, उनमें से हम 4 कॉलेज से डील करते हैं। तो ऐसा नहीं कि
4 कॉलेज,
हाँ तो ये नहीं कि कोई फर्जी कॉलेज होगा। 7 साल लगते हैं अप्रूवल लेने में गवर्नमेंट फंडिंग के लिए, कॉलेज अपना अप्रूव कराने के लिए, है ना। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट पागल नहीं है। आप पढ़े, इजी टू पास कोर्सेज घर के कंफर्ट से करें, 2 से 3 घंटे मंडे टू फ्राइडे आप आराम से पास हो जाएंगे। आप हमें कॉन्टेक्ट करें, गवर्नमेंट
तो
फंडिंग ले। ओह, पर नंबर देना भूल गया, नंबर है 4372643175। नंबर अगेन 4372643175 ये हमारा नंबर है। अब लाइक यही है कि गवर्नमेंट एजुकेशन स्पॉन्सर करती है। गवर्नमेंट एजुकेशन क्यों स्पॉन्सर करती है? हमारे साथ इतने बड़े पत्रकार बैठी है मैम, अरफा जी को पता है गवर्नमेंट यूक्रेन को $22 बिलियन दे चुकी है फंडिंग में, ग्रांट्स में, ठीक है। गवर्नमेंट ने चाइल्ड कनाडा डेंटल केयर प्लान चल रहा है, डेंटिस्ट जो खाली था सारे बिजी है, गवर्नमेंट ने बिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग करी उधर। वैसे गवर्नमेंट
इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ केयर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग करती है। सिमिलर में गवर्नमेंट एजुकेशन में फंडिंग करते हुए पता नहीं होता, लगता कुछ कैच होगा। देयर इज नो 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 कैच इन इट। 7 साल से हम धंधे में बहुत लोगों को हेल्प कर चुके हैं। ऑफिस आई आप हमारे
7 years इन द।
हाँ जी, मेरे बाल सफेद हो गए, मेहंदी लगाई हुई है मैंने तो इसलिए वाइफ कहती लगा लिया करो मेहंदी, मैंने कहा लगा लेते हैं चलो।
मतलब दुनिया में किसी भी गोरे के पास चले जाओ, काले के पास चले जाओ, औरतें रूल करती हैं।
हाँ जी,
मैन इज हेड ऑफ द फैमिली, वुमेन इज अ नेक। जिधर दिल करे उधर गर्दन मोड़े।
हाँ जी,
औरत ही है ना, औरत इज अ नेक एंड मैन इज अ हेड।
हाँ जी,
अब आपने कहा कि आपका कोर्स करने के लिए मियां बीवी दोनों ज्वाइन कर सकते हैं।
बिल्कुल,
अगर आदमी अच्छी जॉब करता है और औरत घर बैठी है, अब वुमन कैन ज्वाइन
100%। हमारे मेन क्लाइंट्स हाउसवाइफ है, मेनली हाउसवाइफ है। वी हैव हेल्प मेनी उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हमारे मेन क्लाइंट है। इसमें एलिजिबिलिटी है पीआर, सिटीजन या प्रोटेक्टेड पर्सन एंड मेन कुंडी। मैं नहीं कह रहा एवरीबडी इज एलिजिबल ना, अगर आपकी फैमिली इनकम लास्ट ईयर के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे लेस देन $70,000 है तब आप एलिजिबल है। फंडिंग जो रेंज करती है आपके फैमिली साइज पे भी, अगर किसी के 4 बच्चे हैं तो उसकी फंडिंग ज्यादा होगी, अगर 1 बच्चा है तो फंडिंग उस हिसाब से कम होगी।
तो नुकसान ही नुकसान में, ना गवर्नमेंट चाइल्ड टैक्स ना कुछ,
तभी अच्छा बन जाता उनका लाइक हस्बैंड।
एक बच्चा वाला तो मरा हुआ पर्चा है, उसको तो कोई बेनिफिट ही नहीं मिलता।
इसमें एक बच्चे वाले को जो हमारे क्लाइंट्स कोर्स कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ, उनको 52,000 की ग्रांट, नेट ग्रांट उनके खाते में आ रही है, $52,000 2 साल में उनके खाते में गिरते
हैं। अगर 4 बच्चे हैं 70,000,
4 बच्चे तो 90,000 ग्रांट 2 साल की। और बताओ बड़ी बात, मैंने कॉलेज की फीस जो कि पूरे साल के 9700 है माइनस करके बताया। ये नहीं कि आप मेरे ऑफिस आएंगे अरे माइनस करनी थी, ना ना ना, ठा करके 90,000 आपके खाते में आता है। गवर्नमेंट फंडिंग, गवर्नमेंट कहती है जितना बड़ा फैमिली साइज है, बच्चे पालने ना पैसे ले हमसे। गवर्नमेंट इस देश में माता पिता की तरह है। जब हमें रिफ्यूजीज को गवर्नमेंट ने $1 बिलियन का होटल बिल पे लगा दिया 7 साल में, बट गवर्नमेंट जब हम पे इन्वेस्ट करती है सिटीजन पे, हमें लगता है कुछ कैच होगा, कोई ऐसे है। देयर इज नो कैच नेट, गवर्नमेंट का प्रोग्राम, मेरे घर का प्रोग्राम नहीं है ये ना। आप हमें अभी कॉल करें, एजुकेशन फंडेड कोर्सेज, गवर्नमेंट आपको रहने खाने के लिए ग्रांट्स देती है, $30,000 से $1,00,000 2 साल में खाते में 4 किस्तों में गिरता है, साथ में ऑप्शनल लोन भी जो कि $70,000 से लेकर
देना होगा।
हाँ, सब कुछ एग्जाम 2 से 3 घंटे मंडे टू फ्राइडे, सिंपल। बड़ी अच्छी बात, एग्जाम था ही नहीं, असाइनमेंट्स है, हफ्ता मिलता सबमिट करने के लिए, आराम से पास हो जाते हैं।
हम औरतें बड़ी ताकतवर हैं, हम अपने मियां से कहेंगे मेरी असाइनमेंट तुम कर दो।
आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच चुकी है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नंबर दो ना बच्चे, नंबर
4372643175, नंबर अगेन 4372643175। गवर्नमेंट फंडेड कोर्सेज करें, घर के कंफर्ट से करें, 2 से 3 घंटे मंडे टू फ्राइडे। गवर्नमेंट आपको पढ़ने के पैसे देती है, ग्रांट मतलब टोटल फंडिंग $75,000 से $1,75,000 तक की है, 2 साल के कोर्स की बात करो। हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ रहे हैं ये मान के, और बाकी मैंने रेंज को दी, ओके, इसमें फैमिली साइज पर डिपेंड करता है। और इसमें से ग्रांट का पैसा कितना, 75,000 से 1,75,000 में से $30,000 से $1,00,000, $30,000 to $100,000 इज द ग्रांट मनी, जो कहीं भी कैसे भी यूज करें। ऑप्शन लोन से डर लगता तो मत लीजिए, बड़ी अच्छी बात, कोई क्रेडिट चेक नहीं होता इसके अंदर। गवर्नमेंट आपको एजुकेशन के लिए फंडिंग कर रही है, गवर्नमेंट आपको लोन नहीं दे रही है, मतलब घर के लोन नहीं दे रही आपको यहाँ पे ना। नंबर 4372643175, नंबर अगेन 4372643175।
कोर्सेज कौन कौन से?
देखो, बिजनेस मैनेजमेंट, अगर किसी ने बैक होम से डिग्री कर रखी है या कनाडा से डिप्लोमा कर रखा है, वो जाता है बिजनेस मैनेजमेंट के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में। जैसे मैंने कहा, इजी टू पास, 2 से 3 घंटे मंडे टू फ्राइडे क्लासेस हैं। इसका फंडिंग ज्यादा है, क्योंकि 2 साल का कोर्स है, 4 बार फंडिंग आती है। मतलब आपने अभी आपके 45 दिन पहली फंडिंग गिरी, दूसरी 5 महीने बाद गिरी आपके खाते में, सेम नेक्स्ट ईयर। और इसमें कहते हैं ऑनलाइन है, इजी टू पास, नो एज लिमिट, सभी क्लाइंट्स के 40-50 साल से ज्यादा है, सभी फैमिली वाले ही हैं आपकी तरह, हाउस वाइफ, उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, फैमिली इनकम लेस होनी चाहिए तभी एलिजिबल है, राइट। अब इसमें सेकंड है अकाउंटिंग, 1 ईयर का कोर्स है वो, फंडिंग थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू बिजनेस मैनेजमेंट, बट अब स्किल सीख रहे हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वाला बंदा, हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो $800 का ऑफिस रेंट पे लेके उनके क्लाइंट्स बन चुके हैं, देर एस्टेब्लिश नाउ, उन्होंने अब ट्रक वाले बंदे को अपना क्लाइंट लिया। एक ट्रक वाला आपको $1,000 देता है, सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा, अकाउंटिंग
12,000
बन जाता है हर ट्रक बढ़ता, मतलब वो अकाउंटिंग वाले भी।
नंबर
4372643175, नंबर अगेन 4372643175।
कौन एडमिशन ले सकता है एक दफा रिकैप कर।
हाँ जी, आपके पास कनाडा में स्टेटस जरूर होना चाहिए। हम लोग कनाडा में पीआर के लिए मेहनत क्यों करते हो, क्योंकि बेनिफिट्स है गवर्नमेंट के, नहीं तो हम अफ्रीका की घर भी ले सकते थे, है ना। तो गवर्नमेंट आपके पास पीआर का स्टेटस होना चाहिए, सिटीजन का, प्रोटेक्टेड पर्सन, आपका रिफ्यूजी केस पास हो चुका है, तब भी एलिजिबल है। मेन थिंग आपकी फैमिली इनकम लेस देन $70,000 होनी चाहिए, और आपके किड्स जितने ज्यादा होंगे फैमिली साइज के आधार पर फंडिंग गवर्नमेंट की ग्रांट्स डिपेंड करती है, उसके हिसाब से फैमिली साइज के हिसाब से अभी भी कॉल करें, आप असेसमेंट करेंगे आपका। हमारे ऑफिस है हमारा 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड हरन टारियो डेरी पे हमारा ऑफिस है, स्वीट नंबर 212।
एड्रेस तो जरा इसका बताओ।
हाँ जी, एड्रेस है 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड मिसिसागा हरन टारियो डेरी पे, स्वीट नंबर 212 सेकंड फ्लोर पे। ऑफिस आए, 10 मिनट आपको लगेंगे समझने में, जितने केस देखने जितने क्लाइंट से बात करनी आप करें, सारा बाय द बुक्स है। हमारी फीस हम एयर भी बताते हैं $199 $199 फीस है, शुरू में नहीं देनी, आपके इंस्टॉलमेंट जब पहले गिर जाती खाते में तब आपने हमारी फीस देनी है। हम एयर पे फीस बताते हो कि मीठी मीठी बातें करके आप हमारे ऑफिस आए आपको फिर फीस बताएंगे हम, आइए बैठिए, ऐसा नहीं है। हमारी फीस 199 है और इसलिए हम एयर पे था करके बताते हैं।
फोन नंबर
4372643175, नंबर अगेन 4372643175। हम बहुतों को हेल्प कर चुके हैं, नहीं कि शुरू कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया हमें करते हुए,
7 साल से।
हाँ जी, बहुत टाइम हो गया, वी हैव हेल्प मेनी फैमिलीज।
यू आर इन द बिजनेस फॉर 7 इयर्स, थैंक यू वेरी मच।
एजुकेशन कंसल्टेंट
मिस्टर ना, एजुकेशन कंसल्टेंट है यूनी एडवाइजरी, दे आर एजुकेशन कंसल्टेंट्स। आप जरूर मुलाकात कीजिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि न सिर्फ ये कि आप इनसे मिले, आप अपने दोस्त अहबाब को जरूर बताएं। कहते हैं दिए से दिया जलता है, दिवाली का मौका वैसे भी है, दिए से दिया जलता है। इफ यू थिंक एनीबडी इन योर फैमिली और आपके फ्रेंड्स में कोई ऐसी फैमिली है जिसमें खवातीन घर में है, दे कैन डू दीज कोर्सेज, दे कैन मेक देयर टाइम यूजफुल, दे कैन मेक देम सेल्फ यूजफुल, प्लीज गाइड अदर्स, एंड दीज आर गवर्नमेंट ग्रांट्स, इट्स गवर्नमेंट प्रोग्राम।
आप पढ़ भी रहे, आप डिग्री भी मिल रही है आपको, और आपको गवर्नमेंट फंड भी कर रही है, पैसे भी आपको गवर्नमेंट पढ़ने के पैसे दे रही है एक तरह से, राइट, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है हर बंदा पढ़े, क्योंकि फिर बाद में टैक्स करके गवर्नमेंट ले लेती है ना, टैक्स अच्छी तरह बाद में गवर्नमेंट, हम जितना आगे बढ़ेंगे देश उतना आगे बढ़ेगा।
एग्जैक्टली, देश उतना आगे बढ़ेगा, दे वांट टू सेटल अस। मिस्टर नागपुर, थैंक यू वेरी मच, अ वेरी वंडरफुल यंग मैन। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनसे मुलाकात जरूर कीजिएगा। 212 एक्सपोर्ट ड्राइव, ये बिल्कुल करीब में ही, फिर इंटेरियो एंड
ओरेंटारियो डेरी,
ओरेंटारियो डेरी के ऊपर आपका ऑफिस है, ऑफिस जाके मुलाकात कीजिए, आप इनको कॉल कर लीजिए। फोन नंबर एक बार फिर दे दें,
4372643175, नंबर अगेन 4372643175।
थैंक यू वेरी मच,
थैंक यू।
अब मॉर्गेज की परेशानी हुई खत्म, कीस्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ। कमर्शियल मॉर्गेज, रेजिडेंशियल मॉर्गेज, प्राइवेट मॉर्गेज, कंस्ट्रक्शन मॉर्गेज, रीफाइनेंस, रिन्यूअल, सेल्फ एम्प्लॉयड और सेकंड मॉर्गेज, ऑल योर मॉर्गेज सॉल्यूशंस। कीस्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जैस्मीन परमार से आज ही कॉन्टेक्ट कीजिए, इनके पास है मॉर्गेज इंडस्ट्री में सालों का तजर्बा और आपकी मॉर्गेज का आसान हल। जैस्मीन परमार, प्रिंसिपल ब्रोकर, कॉल टुडे 6479235659, 6479235659, स्पीक योर लैंग्वेज इंग्लिश, पंजाबी एंड हिंदी, लाइसेंस नंबर 13654।
चांदनी बैंक्वेट हॉल,
इंटेलिजेंट चॉइस locations, sound system, innovations, Chandni Banquet Hall.
30 years of hospitality experience, corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Indoor and outdoor golf course facilities, Chandni Banquet Hall. For appointment, call today at 905-458-8888, 905-458-8888 or visit chandnivictoria.ca. Chandni.
Are you looking for the residential or commercial mortgage? Sayed Saad Ali, har tarah ki residential or commercial mortgage ke liye aitmaad ki zamanat. Canada ke top bank lender se kam az kam interest rate aapko mortgage lekar denge. Are you self-employed or newcomer, first time home buyer? Is this about the renewal, refinancing, debt consolidation, mortgage for the multiple rental unit, construction loan ya phir home equity line of credit? One solution, all your mortgages. Sayed Saad Ali.
Main Sayed Saad Ali from Dominion Lending Center. 19 saal ka mortgage ka experience. आपकी हर किस्म की मॉर्गेज का हल। प्लीज कॉल 647-794-7000, 647-794-7000।
कुछ हलाल पाकिस्तानी फूड खाना है ऐसा जो दिल को लगे।
अरे मजेदार कड़ाही, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन रोल, बटर चिकन, किड्स मेन्यू, बहुत कुछ। टेक आउट, डाइनिंग या फिर कोई स्पेशल इवेंट, हर चीज पॉसिबल। और हाँ, कढ़ाई पॉइंट की सिग्नेचर डिशेस ट्राई करना मत भूलना।
मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया है।
तो फिर जाइए 285 सेंटेनियल पार्कवे, स्टोनी क्रीक, हैमिल्टन, 9056649988। याद रखना 9056649988।
कढ़ाई पॉइंट, स्टोनी क्रीक,
जहाँ हर मील एक सेलिब्रेशन है।
तैयार हो जाओ, सबसे ज्यादा इंतजार करने वाली फैमिली एंटरटेनमेंट नाइट इनाम घर कनाडा 31 अक्टूबर को, जिसमें शामिल हैं मजेदार डिनर, दिलचस्प गेम, बड़े इनामत और लाइव कॉन्सर्ट। 15 अक्टूबर से पहले टिकट सिर्फ $20, 15 अक्टूबर के बाद टिकट $25। बुकिंग के लिए अभी कॉल कीजिए 416-710-6777, ई ट्रांसफर inamgharcanada@gmail.com।
विलेज टेस्ट पूरे ऑन्टेरियो का सबसे बड़ा हलाल सुपर रेस्टोरेंट है। कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, बारबेक्यूज ट्राई करना चाहते हैं, कढ़ाई आइटम्स हैं एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स में बे इंतहा वेराइटी है। बेहतरीन फीस्ट इंजॉय कीजिए विलेज टेस्ट पे। आफ्टर मिसिसागा दे आर इन ओकवेल एज वेल। विलेज टेस्ट 9052323663। विलेज टेस्ट।
आयशा, ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों? एक ही जगह है, फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स, मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर, न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा, 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
अकाल ट्रक एंड लूम, ताड़े ट्रक बादशाह दी क्वालिटी सर्विस, रिपेयर, ऑयल चेंज, वॉश ते मेंटेनेंस। एक और खुशखबरी, नॉर्थ अमेरिकन, चाइनीज ते कोरियन नवे ते इस्तेमाल शुदा टायर विद फुल वारंटी।
अकाल ट्रक एंड लूम, 1776 मेयरसाइड ड्राइव, 905-565-1100, 905-565-1100।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام سامعین کو خوش آمدید، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر احمد، اور جناب آج بھی آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا تقریباً 6:30 تک۔ ایوری ٹیوزڈے ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اسٹوڈیو میں کرامت اللہ غوری صاحب، اور کافی دیر سے وہ ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے کرامت اللہ غوری صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟
وعلیکم السلام عامر میاں۔
سر حالات تو دنیا بھر کے ہی ظاہر ہے، کہتے ہیں نا کہ سم ٹائم ہم بچپن میں کہتے تھے کہ یہ قیامت آنے والی ہے، اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید قیامت آ گئی ہے۔ ہر بندہ، ہر وہ شخص جو صرف پاکستان میں نہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ رہا ہو، چاہے ہم غزہ کی بات کر لیں، یوکرین کی بات کر لیں، یہاں کینیڈا کی بات کر لیں، پاکستان کی بات کر لیں، وہاں ایک افراتفری، ایک نفسا نفسی کا دور جو ہے وہ جاری ہے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں ہم پاکستان سے۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ افسوسناک واقعہ، آئی ڈونٹ نو کتنی جانوں کا، کیوں زلزلہ پاکستان میں آیا، پشاور میں، اسلام آباد میں، دیر میں، مالاکنڈ اور کئی شہروں میں تقریباً 5.3 کا زلزلہ آیا ہے۔ تو ہم امید ہی کرتے ہیں کہ اللہ آسانی کرے۔ ہمیں بچپن میں بتایا جا سکتا تھا، آپ اس کی تصدیق کریں گے، کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے یا اللہ کو جب غصہ آتا ہے تو یہ جو ایک زلزلہ ہے، طوفان ہے، سیلاب ہے، یہ اس وقت آتے تھے، مطلب جو ہمیں پڑھایا گیا، ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا ان چیزوں، تو تھوڑا سا بتائیں گے اس میں کیا حقیقت ہے، اور یہ اتنے فریکوینٹلی سیلاب، زلزلے صرف پاکستان نہیں دنیا بھر میں آ رہے ہیں۔
عامر میاں، ہمیں بھی بچپن میں ہمارے ماں باپ نے اور اسکول میں ہمارے اساتذہ نے یہی تعلیم دی تھی کہ یہ جو آفات، قدرتی آفات ہیں
جی،
یہ اللہ جب اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے तो इस तरह की आफात भेजता है। और देखो वो हमारे यहाँ जो रिवायात मशहूर हैं उनमें कुर्बे कयामत की बहुत सी निशानियां
जी।
एक तो एक निशानी ये भी है कि कुदरती आफात में इजाफा हो जाएगा। और एक और निशानी जो रसूलुल्लाह की से एक हदीस मंसूब की जाती है वो ये है कि एक वक्त आएगा कि सहरा नशीन एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए बुलंदो बाला इमारात बनाएंगे।
बिल्कुल ऐसे ही है।
तो तुमने देखा अरब शियूख ने गुज़िश्ता 20-25 बरस में क्या काम सबसे नुमाया किया है?
ऊंची बिल्डिंग है,
ऊंची इमारतें बनाई है। वो दुबई में बुर्जुल खलीफा जो दुनिया की सबसे बुलंद इमारत है वो बनाई गई। लेकिन अभी दो दिन पहले सऊदी अरब की हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि वो रियाद में $5 अरब के खर्चे से सरफे से एक बुलंद इमारत बनाएगी स्काई स्क्रेपर जो बुर्जुल खलीफा से दुगना ऊंची हो। तो ये कुर्बे कयामत की जो निशानियां बताई गई हैं उनमें से एक है। और दुनिया के हालात जिस तरह से हम आज नागुफ्ते में देखते हैं तो वो इंतहाई तशवीश का बाइस है।
बेशक
हमारे अपने मुल्क में, हमारे अपने वतन अव्वल में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ मुकम्मल फस्ताइयत का राज है। और मैं वो कथा तो बाद में तुम्हें सुनाऊंगा जो मैंने इसी तासुर से लिखा है। लेकिन एक देखो सियासी इंतशार इस हद तक बढ़ गया है कि सूबे खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वजीर आला सुहेल आफरीदी को अपनी तहरीक इंसाफ के रहनुमा और बानी इमरान खान से अडियाला जेल में मिलने की सहूलत फराहम नहीं की गई। और दोनों मरकज और सूबे पंजाब एक दूसरे पर जिम्मेदारी टाल रहे हैं। मरकज ये कहता है कि अडियाला पंजाब की सरजमीन पर है लिहाजा पंजाब की हुकूमत का उस पर तसर्रुफ है। पंजाब की हुकूमत मुख्तलिफ किस्म के बहाने बना रही है कि आज जो मैंने ये ताजा खबर पढ़ी है वो ये है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के जो मुआविन खुसूसी हैं हुज़ैफा रहमान उन्होंने डॉन न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने इसमें ये कहा है कि मरकज ने पंजाब की हुकूमत से दरख्वास्त की है,
हिदायत दी है।
ये कहा कि हिदायत देने की तो मजाज नहीं है इसलिए कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद
इंडिपेंडेंट
सूबे इन 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 मकासद में इन अमाल में आजाद हो चुके हैं, खुद मुख्तार हो चुके हैं। लिहाजा वजीर आजम ने पंजाब की वजीर आला से दरख्वास्त की है, उनसे इल्तिजा की है कि सुहेल आफरीदी को इमरान खान से मिलने के लिए मतलूबा सहूलियात फराहम की जाएं। और मैंने जो पंजाब हुकूमत का ऐलामिया पढ़ा है वो पंजाब हुकूमत के तर्जुबान ने भी ये कहा है कि वो इस तरह की सहूलियात फराहम करने के लिए काम कर रहे हैं। तो असल में इन दोनों हुकूमतों की डोरियां कहां से खींची जाती हैं वो तो तुम्हें मालूम है, दुनिया को मालूम है कि वो जिनका कोई आईनी किरदार नहीं है कि पाकिस्तान के सियासी निजाम में वो दखील हों, वो मुंतजिम आला बन बैठे हैं, वो अपने आप को पाकिस्तान का मालिक मुख्तार समझते हैं और वो इन कठपुतलियों की टोरियां हिलाते रहते हैं। मरकज में हुकूमत भी, वफाक की हुकूमत भी उनकी बाजगुजार है और पंजाब की हुकूमत भी उन्हीं की आयत करदा है। तो लिहाजा वो डोरियां हिलाने वाले डोरियां हिला के कठपुतलियों को नचा रहे हैं और पूरी कौम भी خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہی ہے اور دنیا بھی تماشا ہی ہے.
لیکن اب آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ بات میری بھی سمجھ نہیں آتی. بیسیکلی جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو اس وقت حکومت وقت ہے ان کا پرابلم ہی یہی ہے کہ وہ جتنا چیزوں کو روکتے ہیں وہ اتنی ہی چیزیں پھیلتی جا رہی ہیں نا. وہ اپنا کہتے ہیں کہ عام الفاظ میں کہ وہ رائتہ پھیلاتے ہی جا رہے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ آفریدی صاحب کو روکنے سے یا عمران خان صاحب کو ملنے نہ دینے سے ان کے اوپر ایسا کیا مطلب ہو جائے گا. حالانکہ اگر وہ مل لیتے ہیں جو بھی انسٹرکشن ہے دینی ہے بات چیت, اور بھی لوگ جاتے ہیں عمران خان صاحب سے, ان کی بہنیں جاتی ہیں ملنے کے لیے.
پختونخوا کی کابینہ نہیں نامزد کی جا سکی اس وقت تک, اس لیے کہ سہیل آفریدی کا یہ کہنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ کہنا جائز ہے, درست ہے کہ وہ تا وقتے کے اپنے تحریک انصاف کے بانی مبانی سے مشورہ نہ کر لیں, ان سے ہدایات نہ لینے, وہ کابینہ سازی کا کام نہیں کر سکتے.
لیکن اس پر بھی آپ کو دیکھا ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے کافی تنقید کا سامنا آ رہا ہے کہ جی آپ نے حلف تو لے لیا لیکن اب تک آپ نے اپنی کابینہ کا بھی جو ہے وہ اعلان نہیں کیا. کیا آپ انہی پرانے جو ہیں وزراء ہیں انہی کے ساتھ کریں گے؟ پھر ود ان پی ٹی آئی بھی چیزیں ہو رہی ہیں جی. آلریڈی جو پی ٹی آئی کے وہ کہتے ہیں جناب, جو آلریڈی وہاں بیٹھے ہیں سیٹوں پر اور جو سرو کرتے رہے, تو کیا ان میں کوئی نااہلی ہے, کوئی پرابلمز ہے؟ کیوں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نئے وزیر اعلی آ گئے وہ اپنی عمران خان کے مشورے کے بعد ہی نئی کابینہ کا جو ہے وہ تعین کریں گے؟
عامر میاں, یہ اختلاف رائے کا ہونا تو ناگزیر ہے, اس لیے کہ جس طرح کا نظام ملک پر قوم پر مسلط کر دیا گیا ہے اس میں اس کے منطقی نتیجے میں یہ خلفشار پیدا ہونا لازمی ہے. اور وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ ڈوریاں ہلانے والے, وہ دانستہ طور پر ارادی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی سطح پر انتشار رہے, اس لیے کہ انتشار ہوگا تو ان کی چودراہٹ برقرار رہے گی. وہ جو نوآبادیاتی نظام تھا جس کا لب لباب یہ تھا, جس کا بنیادی تصور یہ تھا کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو, ڈیوائڈ اینڈ رول, تو یہ ہمارے ملک میں آج ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی سطح پر انتشار پھیلایا جا رہا ہے.
جی.
اور اب تو انتشار کی یہ انتہا ہو چکی ہے کہ پہلے سیاسی پارٹیاں, پہلے قوم کے افراد عدلیہ کی طرف دیکھتے تھے کہ اعلی عدلیہ سے ان کو
کوئی انصاف کی امید ہوتی تھی,
انصاف مل سکے گا, ان کو عدل کی توقع وہ رکھ سکتے تھے. لیکن اب اعلی عدلیہ میں جو انتشار پیدا کر دیا گیا ہے, آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اپنے اعلی عدالتوں کے ججوں کو منع کر دیا ہے کہ وہ کسی پبلک تقریب میں نہیں جا سکتے اور وہاں سیاست پر, ملک کی سیاست پر یا عدل کے نظام کے متعلق کوئی گفتگو نہیں کر سکتے. اور اس کے خلاف آج سپریم کورٹ کے جو دو سینئر ججوں نے باقاعدہ احتجاج کیا, انہوں نے تحریراً سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے احتجاج کیا ہے کہ یہ جو آپ نے نئے قوانین وضع کیے ہیں اس سے تو عدلیہ کے منہ پر, وہ پہلے عدلیہ کے متعلق تصور تو عام یہ ہے کہ اس کی آنکھوں پر نقاب پڑی رہتی ہے, اس لیے کہ وہ فریقین کو دیکھنا نہ پائے. لیکن اب جو پاکستان میں یہ نئے اصول وضع کیے گئے ہیں اس سے تو عدلیہ کے کان بھی بند ہو جائیں گے اور ان کی بولنے کی قوت بھی سلب ہو جائے گی.
لیکن کہیں نہ کہیں یہ ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا ہوگا کہ عوام یہاں اپنا رول کیا ادا کر رہی ہے. جیسے ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ سیلاب آتے ہیں اور جس طرح کی ناگہانی آفتیں, جو آسمانی آفتیں, وہ اللہ کی ناراضگی کی ہی وجہ علامت ہے, اسے آپ نے بھی انڈوز کیا اور وی ایوری بڈی نو. اب یہاں بات کرتے ہیں کرامت صاحب کہ یہ جو حکمران ہمارے اوپر نازل کرتے ہیں, وہاں بھی تو اللہ قرآن میں یہی کہتا ہے کہ تم جیسے تم ہو گے ویسے ہی تمہارے اوپر
ہوں گے,
ویسے ہی. تو ہمیں اپنی کریکشن, ہم ہمیشہ کہتے ہیں جی चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, एमक्यूएम हो, पीटीआई हो, एबीसी और ले लें सारी जमातें, आप हम हमेशा कहते हैं जी सियासतदान हमारे खराब हैं, अस्करी कैदत हमारे जो जर्नल्स हैं वो खराब हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया है और वो अपनी पावर को नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन कभी हम इस पर काम करते हैं, कभी हमने आवाम की जो एक आम आदमी है उसको बिल्ड करने के लिए, उसकी सोच को, उसको शऊर देने के लिए कभी बात की? क्योंकि हम अभी तक एक कौम नहीं बन सके सर, कबीलों में डिवाइडेड हैं, पार्टियों में डिवाइडेड हैं, हमारे लीडर्स तो हैं ही नहीं। लीडर हम, मुझे ऐसा लगता है जैसे कायदे आजम थे हमारे या लियाकत अली खान, उसके बाद तो सब हम फॉलोअर्स हैं। जो हमारा ऊपर बैठा हुआ जो इन्फ्लुएंसर है वो हमें कह देता है और एज एन फॉलोअर्स हम उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। हम तरबियत पहले अपनी क्यों ना करें, हम डायरेक्ट इल्जाम लगाते हैं सियासतदानों पर या एस्टेब्लिशमेंट पर, या हम अदलिया पर कह रहे हैं, हम खुद सही होने के लिए तैयार नहीं है।
नहीं, अवाम की सतह पर देखो, अवाम की तरबियत क्यों नहीं हो पाई? अवाम पाकिस्तान का माशरा जमहूरी माशरा क्यों नहीं बन सका?
सर कभी जमहूरी माशरा था ही नहीं।
इसलिए कि हमारी फिक्र पाकिस्तान बनने के बाद से जमहूरी हो ही नहीं सकी
जी।
और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, सबसे बड़ी जो कमजोरी है हमारे निजाम में वो ये है कि हमने अपने जागीरदाराना सोच को सियासत पर मुसल्लत कर दिया है, उसको हावी होने दिया है और अब यहां तक जागीरदारी का जहर फैला है कि अब मैं ये बबांगे दोहल कहता हूं कि अब जागीरदारी फिक्र रखने के लिए जागीरदार घराने में पैदा होने की जरूरत नहीं है
जी।
अब हर सतह पर
हर आदमी जागीरदार
के हर सतह पर
माइंडसेट,
हर तबके ख्याल में सोच और फिक्र जागीरदाराना हो।
यस, यू आर राइट।
और देखो, जमहूरियत का सबसे पहला सबसे बुनियादी तकाजा क्या है? जमहूरियत का बुनियादी तकाजा यह है आमिर मियां के मुखालफत को बर्दाश्त किया जाए, मुखालिफ को दुश्मन न समझा जाए, मुखालिफ को ये अपना माफी जमीर बयान करने की पूरी सहूलत हो, इजाजत हो, आजादी हो। ये जरूरी नहीं कि तुम जो बात कहो मैं उससे इत्तफाक करूं, लेकिन मुझ पर यह लाजिम है कि मैं तुम्हें अपना दुश्मन न समझूं।
बिल्कुल ठीक।
अब जागीरदारी फिक्र जो हम पर हावी हो गई है, जिसने हमारे पूरे माशरे को एक तरह से मायूब कर दिया है, जिसने हमारे माशरे की फिक्र को तलपट कर दिया है, वो ये है कि जागीरदाराना फिक्र में मुखालफत को बर्दाश्त नहीं किया जाता।
लेकिन कराऊ साहब, यहाँ आपको रोकूंगा, मुझे बताएं, आपका इल्म मुझसे बहुत ज्यादा है, तजर्बा ही बहुत ज्यादा है, हम तो आपसे सीखने के लिए सवालात में कर रहा हूँ। इस 1000 पिछली तारीख में हम जाते हैं, 1000 साल की तारीख जहां हम रह रहे हैं, हमारे बाप दादा या उनके नस्ल हमारी, उसमें कब ये जमहूरियत थी और क्या उस वक्त के माशरे में जो है वो क्या हो रहा था? 1000 साल की हिस्ट्री अगर हम देखें तो क्या हम एज अ कौम भी जो है वो जमहूरी थे?
नहीं, वो जमहूरी निजाम नहीं था।
लेकिन वो चल रहा था कि नहीं?
लेकिन देखो आमिर मियां, दुनिया के बेशतर ममालिक की तारीख गुज़िश्ता 1000 बरस की या गुज़िश्ता सदियों की यही रहे। यूरोप में क्या था? यूरोप में भी ममलूकियत थी, वहां भी बादशाह थे, वहां भी रजवाड़े थे, वहां भी नवाबीन थे, लेकिन जब फिक्र आजाद हुई, जब फिक्र जमहूरी हुई, तो उन्हीं माशरों में जहां पर बादशाहत थी, जहां सल्तनत का निजाम था, वहां जमहूरी।
कितने साल पहले?
नहीं, जब यूरोप में तो ये दो सदियों पहले।
हाँ हाँ, और हमें
ये तहरीक पैदा हुई ना,
हमें
हमारे यहाँ
78 ईयर्स
नहीं, लेकिन 78 ईयर्स कम नहीं होते?
नहीं होते, मैं नहीं कह रहा, लेकिन क्योंकि हम हजार साल की उस तरबियत में रहे, जैसे कि तरबियत की बात मैं जो फोकस कर रहा हूँ वो तरबियत की कर रहा हूँ, कि पिछले 1000 साल में चाहे हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हों या इस पूरे खत्ते में ले लें, जिसमें ऑटोमन अंपायर्स भी ले लें, सारी चीजें ले लें, सऊदी अरब भी ले लें, हिंदुस्तान भी ले लें, जब पाकिस्तान अब बाद में आई, वहां जो एक आवाम रह रही थी वही तो आवाम पाकिस्तान में आ गई है ना, वही लोग रह रहे हैं इसी खत्ते में पिछले 1000 साल से। अगर 1000 साल से उनको ट्रेन नहीं किया इस चीज के लिए कि जनाब आपने इस तरीके से वोट डालना है, आपने इस तरीके से अपने شعور کو بیدار کرنا ہے تو وہ کیا ووٹ ڈالیں گے؟
اس لیے کہ ہماری سیاست پر جاگیردار مسلط ہو گئے. تم نے لیاقت علی خان کا ذکر کیا تھا
جی.
ان کو پاکستان بننے کے 4 برس بعد ہلاک کر دیا گیا, ان کو قتل کر دیا گیا, اور اس کے بعد سے ان کے قتل کی سازش تیار کرنے والے تو جاگیردار تھے. انہوں نے لیاقت علی خان کے کانٹے کو بقول وہ جو پنڈی سازش کا سرغنہ تھا جنرل محمد میجر جنرل اکبر خان, اس نے, میں نے اپنی کتاب میں اپنی یادداشتوں میں ذکر کیا ہے اس واقعے کا, کہ اس نے ہمارے دفتر خارجہ میں, ہم ڈائریکٹرز جو نوجوان ڈائریکٹرز تھے اس زمانے میں, ایک کافی بریک کے لیے جمع ہوتے تھے ایک جگہ پر, اور میجر جنرل اکبر خان جن کو بھٹو نے چیک سلواکیا میں پاکستان کا سفیر لگا دیا تھا, وہ پاکستان آئے ہوئے تھے اور وہ اس کمرے میں تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا کہ نوجوانوں تمہیں کیا معلوم ہے کہ ہم نے تو لیاقت کے کانٹے, یہ الفاظ تھے, لیاقت کے کانٹے کو اپنے راستے سے بہت پہلے ہٹا دینا چاہا تھا, راو پنڈی سازش بے نقاب ہو گئی, وہ اس وقت تو بچ گیا تھا لیکن اس کے بعد راول پنڈی میں مارا گیا. تو یہ جب فکر ہو, یہ جب سوچ ہو, تو یہی تو رونا ہے.
لیکن سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں,
ہم اپنے پڑوسی ممالک میں دیکھتے ہیں
جی.
بنگلہ دیش میں فکر جمہوری ہو چکی ہے, لہذا وہاں
وہ بھی ابھی ہوئی ہے
نہیں,
ورنہ حسینہ واجد صاحبہ کو دیکھیں یا خالدہ ضیاء صاحبہ کو دیکھیں, وہ بھی وہی حال تھا جو ہمارا ہے.
لیکن فکر تبدیل,
یہی تو وہ تو انقلاب, وہ تو کہہ لیں کہ وہی جین زی جن کو ینگ نوجوان کہتے ہیں وہ باہر نکلا ہے, یہی نیپال میں ہوا, یہی سری لنکا میں ہوا.
ہندوستان میں کیا ہوا؟ ہندوستان میں جمہوریت کیوں اتنی کامیاب ہے؟
سر وہاں ان کے جو نہرو صاحب ہیں نا وہ زیادہ دن جی گئے.
نہیں,
میرے نزدیک
نہیں, انہوں نے جو سب سے پہلا کام کیا, جو سب سے اچھا کام کیا, وہ یہ کہ جب ہندوستان آزاد ہوا ہے, جب پاکستان آزاد ہوا ہے تو غیر منقسم ہندوستان میں تم کیا سمجھتے ہو کتنے رجواڑے تھے, کتنی ریاستیں تھیں؟ 555 رجواڑے اور ریاستیں تھیں. پٹیل نے, جو وزیر داخلہ تھا نہرو کی کابینہ میں, اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ رجواڑوں کو ختم کر دیا, ان کو ختم کر دیا. اس کے بعد عوام ان کے تسلط سے آزاد ہو گئے, لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, بھارت کی دشمن کی بھی مثال بھی دینی چاہیے,
تو جس کی جو چیز اچھی ہے اس کو سیکھنا چاہیے.
تو بھارت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو آج تک جمہوریت کا پودا پنپ ہی نہیں سکا. بھارت میں جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں, لہذا اس کے باوجود کہ گزشتہ برسوں میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے جو نفرتوں کا زہر پھیلانے کی کوشش کی ہے جس میں وہ بڑی حد تک کامیاب بھی رہے ہیں, اس کے باوجود وہاں پر جمہوریت کا نظام غیر مستحکم نہیں ہوا. تم بھارت کے متعلق یہ تصور نہیں کر سکتے کہ بھارت کی سینا کا سپہ سالار کسی دن دور درشن پر جائے گا اور وہ یہ اپنے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہے گا کہ سنو, ان سیاستدانوں نے سب نظام خراب کر دیا گیا تھا, اب میں آ گیا ہوں نظام کو درست کرنے کے لیے. ہماری تاریخ دو بدقسمتی سے یہ رہی ہے کہ ہمارے عسکری تالے آزما جان بوجھ کر جمہوریت کو پروان نہیں چڑھنے دیا.
بالکل صحیح,
اچھا نے جمہوریت کی بے خونی کی
ہے. کیونکہ وقت ہمارے پاس کام ہے, تیزی سے بڑھ رہا ہے, میں آپ کرنٹ سچویشن پہ بات کر لیتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے, آپ کی رائے میں, آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے, آپ نے دنیا دیکھی, آپ نے ہر پوزیشن پہ کام بھی کیا, کیا سولوشن آپ دیکھتے ہیں؟ مطلب اگر میں آپ سے کہوں کہ ایز این اسٹوڈنٹ آپ سے سوال کروں کہ کرامت صاحب, یہ ایک جو قبیلہ ہے, ایک جو کہتے ہیں نا کہ بھیڑ ہے, جمہور ہے, قوم تو ابھی تک بنی نہیں ہے, اس جمہور کو آپ کیا کہیں گے کہ اس نے کیا کرنا چاہیے؟ اب آئی نو کہ بہت سارے لوگ بولیں گے جی عمران خان کو باہر نکال دو سب صحیح ہو جائے گا, مجھے نہیں لگتا.
نہیں, وہ سب درست نہیں ہو جائے گا. دیکھو, पाकिस्तानी माशरे की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, हमने जानबूझ के नौजवानों में वो सियासी शऊर बेदार नहीं होने दिया जिसकी हर जमहूरी माशरे को जरूरत होती है। पाकिस्तान में स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदियां लगा दी गई और स्टूडेंट यूनियन वो नर्सरी होती है जहां पर नौजवान कम उम्री में जमहूरियत का दर्स लेना शुरू करते हैं। तो ये पाबंदी किसके दौर में लगाई गई, अस्करी तालियाज़।
सर ये तो सही है, मैं कह रहा हूँ कि आप सोल्यूशन क्या करें, मतलब क्या किया जाए, ऐसा क्या नई नौजवान नस्ल जो आपको सुनती है, दुनिया भर में पाकिस्तान में भी हमारा प्रोग्राम देखा जाता है सुना जाता है, कि ऐसा क्या करे नौजवान नस्ल की वो अपने आप को जिस भंवर में फंसे हुए उसको निकाल सके,
के नौजवानों को
या सड़कों पर निकालें,
अपने कुर्बो जवार के नौजवानों की मिसाल से इल्म हासिल करना चाहिए, रोशनी लेनी चाहिए। और इसलिए कि देखो हमारी नस्ल तो अपनी जिंदगी गुजार चुकी
जी।
अब जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो तो नौजवानों से वाबस्ता है और नौजवानों का मुस्तकबिल भी मुल्क से वाबस्ता है, दोनों का मफाद एक दूसरे से वाबस्ता है। लिहाजा नौजवान नस्ल को ये चाहिए, और इमरान खान के खिलाफ क्यों अस्करी ताले आजमा हुए, इसलिए कि उसने नौजवान नस्ल को बेदार करना चाहा था, उसने नौजवान नस्ल में सियासी शऊर पैदा करने की कोशिश की थी, पहल की थी, आगाज किया था। और आज की नौजवान नस्ल को तो वो सहूलतें हासिल हैं, आमिर मियां जो मेरी नस्ल को
नहीं थी सर,
हम नौजवान थे हमें हासिल
नहीं थी सर बिल्कुल नहीं।
आज तो दुनिया टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर वो एक छोटा सा देहात हो चुकी है, गांव
आपके हाथ में पूरी दुनिया सेलफोन में।
वो जो रसूलुल्लाह की हदीस है ना कि एक वक्त आएगा कि हर शख्स का नामा आमाल उसके हाथ में दे दिया जाएगा, तो ये नामा आमाल आज का
हमारा
सेलफोन है, ये हमारा नामा आमाल है। तो हमारी नौजवान नस्ल के लिए तो मालूमात के लामहदूद जराए हैं, उसके लिए तो वो एक तरह का एक्सप्लोजन कहा जाता है, न्यूज एक्सप्लोजन, तो उसके पास तो मालूमात तक रसाई के लिए कोई फुकदान।
लेकिन सर आप बात कर रहे हैं ना कि इमरान खान साहब के साथ ये हुआ, मैं एज एन स्टूडेंट जितना हिस्ट्री को पढ़ता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि हर इट्स नॉट ओनली इमरान खान, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साथ भी एंड में यही हुआ, बेनजीर साहिबा के साथ भी यही हुआ, नवाज शरीफ के साथ कई बार हो चुका है, इमरान खान के साथ इसलिए ही हो रहा है क्योंकि अब इमरान खान साहब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपने देखा होगा यही टाइम था 90s का या 20s का एंड का,
इमरान अपने उसूलों पर अब सौदा करने के लिए
मैं बिल्कुल सही एग्री सर इस बात से, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो नौजवान नस्ल है, जाहिर जब इमरान खान साहब 2018 में जीत कर आए सामने एज एन प्राइम मिनिस्टर सामने आए, तो मुझे ऐसा लगता था कि जितने भी नौजवान हैं मुझ समेत और कई ऐसे नौजवान जो मुझे इस वक्त सुन भी रहे होंगे वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि अगर इमरान खान साहब, और मैंने जैसे हमेशा कहा है कि वाहिद जिंदगी का अगर मैंने वोट डाला है यहां कनाडा आने से पहले वो मैंने इमरान खान साहब को डाला, एक ही वोट डाला है लाइफ में 2013 वाला, उसके बाद मैं 15 यहां आ गया था तो 18 में मेरे इलेक्शन में नहीं जा सका। इमरान खान साहब को जब इतना पीछे सपोर्ट था नौजवान, जैसे आप कहते हैं जी सारा नौजवान इमरान खान साहब के पीछे खड़ा है, सर अगर 6 महीने में 1 साल में मुझे पता चले मैं इस इदारे में जहां काम कर रहा हूं कुछ कर रहा हूं और वहां करप्शन या दूसरी चीजें ऐसी हैं जिनको मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, सर मैं रिजाइन करूंगा, मैं बाहर आ जाऊंगा।